ये आकाशवाणी दिल्ली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महिलाओं की विकास में भागीदारी से ही राष्ट्र का विकास संभव है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित 628 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर हितधारकों के विचार और सुझाव जानने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का प्रचलन अप्रैल 2025 से शुरू होने की संभावना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महिलाओं के विकास पर ही राष्ट्र का विकास संभव है। वे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका विषय पर विचारों के आदान प्रदान सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाएं और महिलाएं शक्तिशाली होती हैं। इनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही सामाजिक माहौल बेहतर होता है। उपराष्ट्रपति ने सशक्तिकरण में महिलाओं के नेतृत्व पर बल दिया। उन्होंने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या की घटना पर भी दुख व्यक्त किया।
जहां औरतें लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो समाज सभ्य समाज नहीं है, वो डेमोक्रेसी कलंकित है, वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक सिद्धांतों का हिस्सा है, इससे महिलाओं को न्याय सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा है कि भारत एक परिपक्व परिष्कृत और औपचारिक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश एक मजबूत औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इस बीच उपराष्ट्रपति ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से प्रगति के द्वार खुलते हैं। उन्होंने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नए संसद भवन का दौरा करने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा के दौरान हो रहे परिवर्तनों को देखने के लिए आमंत्रित किया। पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के एक उपाय के रूप में सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है और भविष्य पोर्टल का एचआरएमएस के साथ डिजिटल एकीकरण किया है। इन अनूठे उपायों की शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि सरकार जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र और ईएचआरएमएस के साथ भविष्य के डिजिटल एकीकरण से पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव विवेक जोशी ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इन उपायों को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि 9 पेंशन फॉर्म को मिला दिया गया है और एक नया एकल फॉर्म बनाया गया है जो पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। पेंशन विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि ईएचआरएमएस के साथ भविष्य के एकीकरण से पेंशनभोगियों द्वारा पेंशन आवेदन की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों को एसएमएस और ईमेल के जरिए स्थिति की जानकारी दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। संयुक्त संसदीय समिति की वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विभिन्न हितधारकों से विचार और सुझाव लेने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक हुई। एक रिपोर्ट। लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति ने लोगों, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और संस्थानों सहित हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे। समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। 31 सदस्यीय समिति में 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। विधेयक का उद्देश्य कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रावधान है। यह जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी पद के किसी अन्य अधिकारी को सर्वेक्षण आयुक्त के कार्य भी प्रदान करता है। ये बोहरा और आगाखानी समुदाय के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना और मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान करता है। विधेयक में 2 सदस्यों वाले ट्रिब्यूनल ढांचे में सुधार करने और ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का भी प्रावधान है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का प्रारूप लोकसभा की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक को जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने भिक्षावृत्ति की रोकथाम और भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास पर आज नई दिल्ली में चर्चा का आयोजन किया। NHRC की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने कहा कि आर्थिक प्रगति और कई सरकारी पहलों के बावजूद भीख मांगने की प्रथा का जारी रहना गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताओं का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि आयोग इन व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। चर्चा में इस समस्या से निपटने के लिए कई सुझाव, जैसे भिखारियों की अधिकता वाले क्षेत्रों की मैपिंग, उन्हें आधार कार्ड जारी रखना और भीख मांगने को अपराध मुक्त करना शामिल है। दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के अंतर्गत लगभग 62.5 किलोमीटर हिस्से को मुक्त कराया है। निगम के अनुसार सिटी SP जोन से इस महीने की पहली तारीख से क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया है। अभियान के अंतर्गत जोन की जनरल ब्रांच द्वारा मुख्य सदर बाजार, बाढ़ा टूटी चौक, तेलीवाड़ा, रुई मंडी, पुल कुतुब रोड, कुतुब रोड, पान मंडी, इंद्रलोक साप्ताहिक बाजार, शास्त्री नगर, किशनगंज, सुभद्रा कॉलोनी, दया बस्ती, पुराना रोहतक रोड सहित कई इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया है। इस अभियान के दौरान 465 सामान जब्त किए गए और आवश्यक कार्रवाई भी की गई। निगम ने बताया है कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ये कार्रवाई की गई। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि वो अपने सभी जोन में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई इस रविवार दिल्ली के झुग्गी क्लस्टरों के बाहर स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि भाजपा के विस्तार अभियान के अंतर्गत पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता गत एक माह से प्रत्येक रविवार को दिल्ली के झुग्गी क्लस्टरों में संपर्क अभियान चला रहे हैं। श्री सचदेवा ने बताया कि इसी क्रम में पार्टी नेताओं ने झुग्गी वासियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, जैसे बढ़े हुए बिजली बिल, पेयजल की कमी, जल जमाव, शौचालय अभाव और स्वास्थ्य शिक्षा को समझा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद उनकी केवल एक सूची जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि घोषणा की कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे पार्टी उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले के लाड़वा से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित 628 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 27 डॉक्टरों सहित विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। पत्रकारों से बातचीत में दिल्ली के उपराज्यपाल ने बताया कि पिछले 2 साल में 17,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक 20,000 लोगों को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र सीडीआई ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाकर 7 सितंबर 2024 कर दी है। सीडीओई विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है जिसमें अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, इस्लामिक अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल हैं। साथ ही केंद्र बीए, बीबीए, बीकॉम और बीसीआईबीएफ जैसे स्नातक पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता परीक्षाओं के आधार पर उपलब्ध हैं। आवेदक प्रवेश संबंधी सभी जानकारियां जामिया की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत और ललित कला संकाय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मल्हार उत्सव का आज समापन हुआ। इस उत्सव में देश के प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए बजाए जाने वाले रागों का प्रस्तुतीकरण किया गया। कार्यक्रम में राग मल्हारी के अंतर्गत संकाय के सरगम चोइर द्वारा विभिन्न मल्हार प्रकारों के समूह गायन की प्रस्तुति की गई। इस उत्सव में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा, डॉ चंद्रमा मजुमदार, पंडित विनोद लेले सहित अन्य कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आकाशवाणी ने विमेंस कलेक्टिव फोरम के सहयोग से महिलाओं के लिए एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रंग भवन परिसर में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य संगीत के माध्यम से देश की महिलाओं का सम्मान करना और महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना है। इस कार्यक्रम के दौरान देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों पर दुख व्यक्त किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये कार्यक्रम महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सम्मान व्यक्त करता है। दिल्ली सरकार का कला, संस्कृति और भाषा विभाग कल गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर में शाम 5 बजे से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करेगा। दिल्ली सरकार में कला, संस्कृति और भाषा विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है। दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एनआईए से वाणिज्यिक उड़ानों का प्रचालन अगले वर्ष अप्रैल में शुरू होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
हवाई अड्डे की ओर से कहा गया है कि इस वर्ष के अंत तक उड़ान प्रक्रिया परीक्षणों सहित एरोड्रोम लाइसेंस के लिए वे अपना आवेदन दाखिल करेगा। हवाई अड्डे के पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल होगा जिसमें सालाना 1,20,00,000 यात्रियों के यातायात को संभालने की क्षमता होगी। सभी 4 विकास चरणों के पूरा होने पर हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 7 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वृहित दिल्ली क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारत और विश्व के अन्य क्षेत्रों से जोड़ेगा। एनआईए ने बेहतर नेटवर्क योजना और प्रचालनगत आवश्यकताओं के लिए वैश्विक हवाई अड्डों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
उत्तर रेलवे ने पलवल न्यू प्रथला डीएफसीसी यार्ड के बीच रेल कनेक्टिविटी के संबंध में पलवल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को अगली सूचना तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। राजधानी के कुछ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महिलाओं के विकास में भागीदारी से ही राष्ट्र का विकास संभव है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित 628 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर हितधारकों के विचार और सुझाव जानने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।